प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रेम। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंजे सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु एक वर के रूप में चित्रित किया गया है और कलीसिया एक वधु के रूप में। और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं समझ सकें और अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार चलने पाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन में निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इससे अध्ययन के आरंभ में ही मैं आपको फिर से डॉक्टर स्कॉफिल्ड का विचार प्रकट करना चाहता हूँ। यीशु का साधुत्व ऐसा सहृदय और मानवीय है कि वह आकर्षित करता है, प्रेरित करता है। हम उसमें कुछ भी अति गंभीर और पहुंच से बाहर नहीं देखते, जैसे किसी मूर्ति में। उसकी पवित्रता का सौंदर्य हमें एक गुलाब या फूलों के गुच्छे का स्मरण कराता है। यीशु पापियों को स्वीकार करके उनके साथ भोजन करता है। निकोदेमुस नैतिक धर्मी पापी, मगदला की मरियम जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, एक विस्मयकारी पापिन, वह पापियों के जीवन में ऐसा घुल मिल जाता है जैसा स्वच्छ निर्मल जल का सोता स्थिर जल में। सोता अशुद्धि से डरता नहीं, परंतु उसकी मनोरम ऊर्जा जल कुंडों को स्वच्छ कर देती है। मैं फिर कहता हूं कि उसकी सहानुभूति पूर्ण रूप से मनोरम है। इसी संदर्भ में वह सदा तरस से पूर्ण है। वह चरवाहे के बिना भीड़, नाइन नगर की दुखी विधवा, शासक का मृतक बच्चा, गरासीन का दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य, 5,000 भूखे पुरुष और अन्य कुछ भी जो यीशु को कष्ट पहुंचाए और उसके हृदय को छू ले, शास्त्रियों और फरीसियों पर उसका क्रोध, उसकी अत्यधिक अनुकंपा के अतिरिक्त कुछ नहीं था, क्योंकि उनके कठोर स्वार्थ के कारण लोग दुख उठा रहे थे। क्या आपने कभी यीशु को कंगालों की खोज में देखा है? उसने उनके सब रोगियों को चंगा किया और उसकी अनुकंपा में कैसी गरिमा थी। उसने उस कोढ़ी को क्यों छुआ था? वह उससे कहकर चंगा कर सकता था जैसे उसने उस कुलीन मनुष्य के पुत्र को उठाया था। यह कुष्ठ रोगी वर्षों से जाति बाहर क्यों था? परिजनों से अलग क्यों था? मनुष्य का सा व्यवहार क्यों नहीं पाता था? उससे मानवता का अधिकार क्यों छीन लिया गया था? उसके निकट जाना ही अशुद्ध होना क्यों माना जाता था? यीशु के स्पर्श ने उसे फिर से मनुष्य बना दिया। मेरे प्रियो, लंदन में कोढ़ियों के मध्य सेवारत एक मसीही महिला ने एक रोगी बालिका को खुले ठंडे कमरे में देखा। उसने अपने हाथों से उसकी सेवा की, उसका बिस्तर लगाया, उसे दवाइयां और अच्छा भोजन, आग आदि प्रदान की और उसके कमरे में आशा और आनंद से यथासंभव भर दिया और फिर उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना कर सकती हूँ? उसने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम स्वर्ग जाने के प्रयास में यह सब करती हो। वह सेवा करती रही और वह पापी लड़की पिघली नहीं। अंत में उस मसीही महिला ने कहा, मेरी प्रिय, तुम अब लगभग चंगी हो गई हो। मैं शायद अब ना आऊं, परंतु मैं अपने इस अंतिम भेंट में तुम्हें चुम्बन देना चाहती हूं। वे प्रार्थनाशील पवित्र होंठ अशुद्ध अपवित्र होठों से जुड़े तो मेरे मित्रों कठोर हृदय टूटा। यह प्रभु यीशु की रीति है। डॉक्टर स्कॉफिल्ड की इन बातों को पढ़कर मेरे मन में श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसका 2 पद विचार में आता है। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। वह अपना प्रेम अनुराग चिंता अनुग्रह दया आप पर बरसाना चाहता है और हम इस पापी लड़की के समान कठोर हो जाते हैं। मैं यहां पर फिर से डॉक्टर स्कॉफिल्ड का विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह जन समूह तक पहुंचने की विधियों पर विचार विमर्श करने हेतु फरीसियों की सभा का आयोजन कर रहा है? इससे मुझे तो यही लगता है कि उसका मनुष्यत्व पूर्ण रूपेण आकर्षक था और वह ही एकमात्र था जिसे अपने जन्म का स्थान और परिस्थिति चुनने का अधिकार था। इस जीवन में आम जनता बनकर जन्मा, यह कैसी दीनता है, कैसी विनम्रता है। मैं तुम्हारे मध्य सेवक हूं। वह अपने शिष्यों के पांव धोने लगा। वह बुरा सुनकर भी बुरा नहीं कहता, जैसे भेड़ी ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहती है। उसने मुंह न खोला। क्या आप यीशु को अपने अधिकारों की मांग करते हुए देखते हैं? परंतु पापियों के साथ उसके व्यवहार में मसीह का सर्वोत्तम आकर्षण, सर्वाधिक मनोरम दिखाई देता है। वह कैसा दीन है, तथापि कैसा विश्वास योग्य, मनुष्यों का ख्याल रखने वाला, कैसा सम्मानित है। निकोदिमुस सुव्यवस्थित निष्ठावान, परंतु इसराइल का शासक होने के कारण गर्व से पूर्ण, परंतु संकट के भय में रात में यीशु के पास आया। परंतु जाते समय उसे समझ में आया कि उस ज्ञानी को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के पहले चरण का भी ज्ञान नहीं था, और वह चला जाता है कि मनन करे कि उन्होंने ज्योति की अपेक्षा अंधकार से लगाव रखा, क्योंकि उनके काम बुरे थे। इसकी व्यक्तिगत व्यवहारिकता क्या है? उसने एक भी कठोर शब्द या ऐसी बात नहीं सुनी जिससे उसका आत्मसम्मान आहत होता। मेरे मित्रों, व्यभिचार में पकड़े गए स्त्री को दोष लगाने वालों के एक एक चले जाने पर उसने उसे उसी शब्द स्त्री से संबोधित किया जिस शब्द से उसने क्रूस पर से अपनी माता को संबोधित किया था। अब कुएं पर सामरी स्त्री से उसका वार्तालाप को सुने। वह गहरे सत्य को कैसे धीरे से प्रकट करता है, पाप के गहरे घाव को वह कैसी सज्जनता से वरन निष्ठा से दूर करता है जो उसकी आत्मा को खा रहा था। परंतु वह बैतनिया की मरियम के साथ अधिक सम्मान प्रकट नहीं करता है। मृत्यु की पीड़ा में भी वह निराश विश्वास की पुकार सुनता है। विजेता युद्ध करके लौटते थे तब वे अपने मुख्य बंदियों को पुरस्कार स्वरूप लाते थे। यीशु के लिए एक चोर की आत्मा अपने साथ स्वर्ग ले जाना ही पर्याप्त था। जी हाँ, वह पूर्ण रूपेण आकर्षक है। और अब मैं और अधिक कहने का स्थान नहीं छोड़ता हूं कि उसके मान सम्मान, उसके शक्तिशाली पौरुष, उसके सिद्ध साहस के बारे में कुछ कहूं। यीशु में विभिन्न सिद्धांतों का सिद्ध संतुलन था, सिद्ध गुणों का पूर्ण संतुलन था। उसकी दीनता दुर्बल कभी नहीं थी, उसका साहस निर्दयी नहीं था। मेरे प्रियो, आप इन पर स्वयं मनन करें। उसके पकड़वाए जाने की रात और अभियोगों की सुबह तक उसके साथ अपमान और निंदा के दृश्यों को देखें। उसे महायाजक पिलातुस और हेरोदेश के समक्ष आप देखें। उसे पिटता हुआ, कोड़े खाता हुआ, ठड्डों में उड़ाया जाता हुआ, मुंह पर थप्पड़ खाता हुआ, निंदित होता हुआ, उसके चेहरों पर थूकते हुए जन्मजात महानता की उभरता हुआ आप देखें। उसने एक बार भी अपना सम्मान और मानसिक संतुलन नहीं खोया। मैं किसी उद्धार से रहित पापी को और भी आगे ले जाना चाहता हूं। फाटकों के पार ठट्ठा करने वाली भीड़ के साथ आप जाएं और क्रूस पर उसके हाथों पांव में मोटी कीलें ठोकने की आवाज को सुने, चिल्लाती भीड़ को आप सुने। क्रूस पर एक विनम्र, आकर्षक, साहसी, सुंदर पुरुष को चट्टान में क्रूस पर जड़ता हुआ देखें। वे बैठकर उसे देख रहे थे और आप भी देख रहे हैं। उसकी वाणी सुने कि वह अपने अपराधियों को क्षमा कर रहा है। क्रूस पर से उसके वचन सुने। क्या वह पूर्ण रूपेण आकर्षक नहीं है? इन सब बातों का अर्थ क्या है? उसने काठ पर हमारे पाप उठा लिए। उसके द्वारा सब विश्वास करने वाले धर्मी गिने जाते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मैं अपनी गवाही के साथ समाप्त करता हूं। यह मेरा प्रिय है, यह मेरा मित्र है। क्या आप उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रिय और मित्र स्वीकार नहीं करेंगे? स्कॉटफील्ड का उद्धरण यहां समाप्त होता है और मैं आमीन कहता हूं, अर्थात मैं उसके एक एक शब्द से सहमत हूं। मेरा प्रेमी 10,000 में उत्तम है। वह पूर्ण रूपेण मनोहर है। क्या वह केवल यूसुफ और मरियम का पुत्र है जो 2010 वर्ष पूर्व इस संसार में था? क्या कलवरी से बहने वाला केवल मानवीय लहू था कि पापियों को मुक्ति दिलाए? क्या बुद्धि जीव कहने से वह रुक सकता है? मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। वह उसे जानती थी, वह उसे प्रेम करती थी, वह उसे प्रकट करती थी। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि यह सब कुछ जानती थी क्योंकि वह उसका प्रेमी है। हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 6 के 1 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकलें? यरूशलेम की पुत्रियां अब बदल गई हैं। अब वे उसका ठट्ठा करने की अपेक्षा उसके साथ उसके प्रेमी को खोजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वधू की बातें सुनकर निष्कर्ष निकाला कि वह वास्तव में रूपवान होगा और वे उसे देखना चाहती हैं। बाइबल में लिखा है कि खोजने पर पाया जाएगा। यीशु ने स्वयं कहा है कि यदि कोई उसके पास आएगा तो वह उसे किसी प्रकार से अस्वीकार नहीं करेगा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 6 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। उसे वर मिल गया है। ओह, कैसा आश्वासन है, कैसा संतोष, कैसा आनंद है। परमेश्वर प्रभु यीशु में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। लुका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 35 पद में उसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वह हमारे लिए किए गए प्रभु यीशु के क्रूस के कार्य से पूर्ण संतुष्ट था। वह कहता है कि यदि हम उसके पुत्र के पास आ गए तो हम नष्ट नहीं होंगे, हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। यह कैसा महान निमंत्रण है। वधू में राजा की प्रसन्नता को हम देखते हैं। श्रेष्ठ गीत 6 उसके 4 से 9 पद में, हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। तेरे बाल ऐसे बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। तेरे दांत ऐसे भेड़ों के झुंड के समान हैं जिन्हें स्नान कराया गया हो। उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती हैं, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे कपोल तेरे लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। वहां 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल आदित्य है, अपनी माता की एकलौती अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा। रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। लिखा है कि हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है। इस संपूर्ण गद्यांश में वर की उपस्थिति की लंबी घोर दुखदायी धीरजवंत खोज के प्रति वर की प्रतिक्रिया है। ए मूडी स्टुअर्ट से हमें सहायता मिलेगी। तिरसा प्राचीन कनानी राजा का राजसी नगर था जो उत्तर काल में कुछ समय इसराइल के अधीन था। यह शब्द मनमोहक और नगर स्वयं सुंदरता का प्रतीक था। तिरसा के समान सुंदरी एक दुखी बैठी आहत वधू के संबोधन की कैसा उत्तम अभिव्यक्ति है, जिससे वह प्रेम करने लगता है, उसे वह अंत तक प्रेम करता है। हम बदल सकते हैं, परंतु वह कल आज और सदा एक सा है। हम श्रेष्ठ गीत 6 उसके 10 पद में पढ़ते हैं, यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। इस पद से कलीसिया के उठाए जाने के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण समझ में आता है। मेरे प्रियो, हम कलीसिया के उठाए जाने को अपनी समझ के अनुसार देखते हैं, जो स्वाभाविक ही है, क्योंकि हमारी आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:16 में लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर इस घटना के प्रति अपना दृष्टिकोण रखता है। वह अपनों को पुकारेगा। जब कलीसिया उसकी उपस्थिति में आएगी तब स्वर्गिक प्राणी अनंत काल के लिए ऐसे दृश्य को देखेंगे जो बेजोड़ घटना का होगा। यह घटना हमारे लिए और प्रभु के लिए अत्यधिक उत्साहजनक घटना होगी। तब वे कलीसिया के लिए कहेंगे, यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई देती है। मसीह और कलीसिया की यह एकता इसहाक और रिबका के संबंधों से प्रकट है। इसहाक खेत में था जब उसने कारवां आता देखा। उस कारवां में रिबका एक ऊंट पर बैठी हुई आ रही थी। वह ऊंट पर से उतरी और अपने वर के दर्शन हेतु आगे बढ़ी। यह उस समय का महिमामय चित्रण है जब प्रभु यीशु की उपस्थिति में हम होंगे। आइए हम देखें वधु की प्रतिक्रिया। श्रेष्ठ गीत 6:11-12 में लिखा है, मैं अखरोट की बारी में उतर गई कि तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियें लगी और अनारों के फूल खिले कि नहीं। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। मैं यहां एक घटना सुनाए बिना रुक नहीं पा रहा हूं। मेरा एक प्रचारक मित्र अविश्वासियों में प्रचार करने के लिए गया। उनमें से अधिकांश जन कॉलेज के शिक्षक थे। उनके विचार वामपंथी थे। वे जीवन की बातों को बहुत ही कम समझते थे। मैंने अपने इस मित्र से पूछा, आपने उस समूह में प्रचार करके क्या पाया? उसने कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि मैंने कुछ उपलब्ध किया, परंतु मैं निश्चय ही धर्म शास्त्र पर आधारित था। मैं अखरोट की बारी में उतर गया था, इसमें दो राय नहीं। जी हाँ, वधु के मन में निश्चय ही कुछ सर्वथा भिन्न बात थी। श्रेष्ठ गीत में हम निश्चय ही यह तीसरा बगीचा देखते हैं। ए स्टुअर्ट मूडी कहते हैं, पहला बगीचा बसंत ऋतु में दाग की बारी थी जिसमें फूल लहलहा रहे थे और अंगूर पके नहीं थे। दूसरा बगीचा पतझड़ के मौसम में था जिसमें मसाले और पके हुए फल थे और फलों में कहीं कोई कमी नहीं थी। यह तीसरा बगीचा शीतकाल के अंत में है और बसंत अभी अधिक दूर नहीं है। वधु उस अखरोट के बगीचे में है। वह घाटी में पेड़ पौधों के फूलों का फूटना देख रही है, अंगूर के फूल, अनार की कली। मेरे मित्रों, स्टुअर्ट इसकी तुलना शिष्यों से करते हुए कहता है, जब वे यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूर्ति की प्रतीक्षा में थे, वे भी एक प्रकार से बगीचे में बसंत के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके लिए अब पुराना नियम एक नया खजाना था, क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें संपूर्ण धर्मशास्त्र में अपने विषय खोज करवाई थी। इसे हम लुकार्ची सुसमाचार 24:27 में देखते हैं। पूर्व काल के खजाने को खोलकर एकत्र करते समय उन पर पवित्र आत्मा अकस्मात ही अनापेक्षित सामर्थ के साथ उतरा, जिसका वर्णन श्रेष्ठ गीत के शब्दों से अधिक उत्तम अन्य किसी स्थान में नहीं है। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन एक बगीचा है, अप्रस्फुटित अखरोटों का बगीचा। परमेश्वर के वचन में अनेक दाने हैं जो मसीह की दुल्हन की प्रतीक्षा में हैं, वे वह उन्हें खोजकर उनका आनंद लें। तो आइए हम आगे बढ़ें और पढ़ें श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय उसके 13 पद में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। लौट आ लौट आ हे सुलेमिन, लौट आ लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। क्या तुम सुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसा महनेम के नृत्य को देखते हैं? कहा गया है कि मसीह की दुल्हन युगानुयुग परमेश्वर के अनुग्रह की प्रदर्शनकारी रहेगी। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 7 पद में बताया गया है, वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। संपूर्ण जगत हमें देखेगा, हम में से एक भी इस योग्य नहीं है, परंतु मसीह में होने के कारण, उसमें विश्वास करने के कारण, उसे अपना उद्धारकर्ता मानने के कारण हम वहां होंगे, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, हमारे लिए दे दिया। हम उसकी महिमा और अपनी भलाई के लिए वहां होंगे। मैं इससे अधिक उत्तम बात नहीं देखता हूं। मेरे मित्रों, यह क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को इसलिए भेजेगा कि वह हमें इस जगत से ले जाए ताकि हम उसके साथ रहें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ईशु।